வந்தே கச்சிதானந்தம் வந்தே சச்சிதானந்தம் வந்தே போகிலாஞ்சி யோகி வாஞ்சி சரணபதம் வந்தே.
ईसा का ये कहना कि शत्रु से प्रेम करो एक बहुत बड़ी शिक्षा है और कठिन भी, क्योंकि शत्रु से प्रेम करना, उसकी भलाई करना और उसके लिए प्रार्थना करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन तभी तो मानव विश्व का रूप बदल सकता है, तभी तो बैर, हिंसा, मनमुटाव का नाश होगा और उस विश्व का निर्माण हो सकेगा जिसकी कल्पना को साकार करने स्वयं ईसा ने मानव रूप धारण किया। ईसा की शिक्षाएं सुन बहुत से लोग उनके सेवक बन गए थे। उन्होंने स्वेच्छा से ईसा का मार्ग अपना लिया था। जहां भी ईसा जाते वे उनके साथ जाते, उनकी शिक्षाएं सुनते, उनके चमत्कार देखते।
गुरुवर, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें इससे क्या मिलेगा?
पेत्रुस, मैं तुमसे कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा जमीन जायदाद त्याग दी है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा।
क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है?
क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे।
तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया?
फरीसियों, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुमसे कहता हूं, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वो व्याभिचार करता है।
गुरुवर, इससे तो बेहतर है कि विवाह ही न किया जाए।
सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही जिन्हें ये वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से ही नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया और कुछ लोगों ने स्वराज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वो समझ ले।
विवाह कर दाम्पत्य जीवन को नरकमय बनाने से बेहतर यही है कि विवाह न किया जाए। ईसा चाहते थे कि सृष्टि के प्रारंभ में जिस उद्देश्य से मानव की सृष्टि की गई थी उसे लोग समझें, वो प्रेम पूर्वक जीवन जिए। मगर समय बीतते बीतते वे एक दूसरे के प्रति कठोर और निर्दयी होते गए। ईसा इस तरह शिक्षाएं देने के बाद पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गए और लोगों को चंगाई देने लगे। भीड़ की भीड़ उनके पास आती थी। वे लंगड़े, लूले, नेत्रहीन, मूक, बधिर और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। लोग ये देख अचंभे में पड़ जाते और इसराइल के ईश्वर की महिमा गाते। ईसा लोगों को ये चेतावनी भी देते जाते कि वे उनके नाम को नहीं फैलाएं। इस तरह ईसा लोगों के बीच अपने नम्र स्वभाव के कारण भी प्रसिद्ध होते गए। ईसा नाव पर सवार हो गए, उनके शिष्य उनके साथ थे। जब ईसा समुद्र पार कर गद्रेनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अवधूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए।
ईश्वर के पुत्र,
आपको हमसे क्या लेना देना?
क्या आप यहाँ हमें सताने आए हैं? बोलिए, क्या आप यहाँ हमें सताने आए हैं? यदि आप हमें निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के उस झुंड में भेज दें। हाँ, हमें वहीं भेज दें।
जाओ, ऐसा ही होगा।
गुरुवर, ये सारे सुअर तो समुद्र में जा गिरे।
उन्हें जाने दो, आओ हम अपने नगर चलें।
प्रभु, प्रभु मुझ पर दया करें, मेरा रोग ठीक करें। प्रभु
बेटा, ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए।
ये ईश निंदा करता है।
तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है ये कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, या फिर उठो और चलो फिरो। किंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। रोगी, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ।
इस तरह ईसा ने चंगाई कर नबी ईसाया की ये वाणी पूरी कर दी। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। लोग ये चमत्कार देख ईश्वर की स्तुति करते। ईसा जब वहां से आगे बढ़े तो उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा।
मेरे पीछे चले आओ।
आज तो ईसा मत्ती के घर अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे हैं, और तो और उनके साथ नाकेदार और पापी भी बैठे हैं।
आओ, हम भी चलते हैं।
तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन क्यों करते हैं?
सुनो, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो किसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ।
वास्तव में ईसा धर्मियों के लिए नहीं, उन पापियों के लिए आए थे जिन्होंने ईश्वर की शिक्षाओं, उनके नियमों व आदर्शों का पथ त्याग दिया था। अब वे अंधकार में भटक रहे थे। वे आध्यात्मिक व आत्मिक रूप से रोगी थे जिन्हें क्षमा के इलाज की जरूरत थी। जब ईसा उदाहरणों व दृष्टांतों में उपदेश देने लगे तो लोग चकित थे कि ईसा दृष्टांतों में शिक्षा क्यों देते हैं।
तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं समझते। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा कर दूं। ये बताओ, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पलंग के नीचे रखते? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा।
सद्विचार, सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाले लोग उस दीपक के समान होते हैं जिन्हें लोग जलाकर ऐसी जगह रख देते हैं जिससे चारों ओर प्रकाश फैलता है। धार्मिक व्यक्ति इसी दीपक के समान सत्कर्मों व सद्व्यवहार का प्रकाश फैलाते हैं। काश कि हर व्यक्ति ऐसा एक दीपक हो।